दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा ये शब्द की कहीं अर्थ है, वास्तविक दीक्षा का मुख्य लक्षण है आत्मसमर्पण। आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण पर समर्पण करना है। वास्तव में हम कृष्ण के हैं, कि मैं कृष्ण से भिन्न हूं, मेरा अस्तित्व श्री कृष्ण की सेवा से पृथक है। इस भावना भवबंधन का कारण है, और कि मैं कृष्णदास हूं यही वास्तविक जीवन है। चूंकि हम अभी कृष्ण को भूल करते हैं, इसलिए दीक्षा लेना चाहिए, जिससे शिक्षा लेने से हम फिर भगवान श्री कृष्ण की आनंदमय प्रेममय सेवा में अधिष्ठित हो सकते। तो दीक्षा का मतलब वो विधान जिससे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम् तथा दीक्षा विधानेन कोविदस्तत्व कोविदाय जो तत्व कोविद जो तत्व ज्ञानी है बोलते हैं कि दीक्षा है वो विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या नदी दग्ध काम कामाना दीक्षा और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व पाप का आशा से मुक्त होते हैं, फिर हम उपयोगी होते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में प्रवेश करने के लिए। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कैसे होते? शिक्षा। ऐसा नहीं है कि कई कई बहुत है कि गुरु शिष्य को स्पर्श करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होते हैं, फिर दोनों मूर्छित होते हैं और बाद में शिष्य का पूरा आत्मा साक्षात्कार होते हैं। ये सब कल्पना है शिक्षा के द्वारा, लेकिन यही शिक्षा भौतिक शिक्षा जैसे नहीं है। इस शिक्षा से हमारी वास्तविक स्वरूपगत निजी स्थिति का पुनर्ज्ञान होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चिते करे हृदय। हम कृष्ण भक्त हैं, सब जीव कृष्ण भक्त हैं, लेकिन भौतिक स्थिति में इस बात को भूल करके हम सोचते हैं ईश्वर हम अहम भोगी, मेरे लिए कृष्ण सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन इस दूषित विपरीत बुद्धि से उद्धार करने के लिए हम दीक्षा लेते हैं, इससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन अधिकारी है इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो पहले क्या करना चाहिए? बीएससी, एमएससी, एमए ने, तो पहले आत्मसमर्पण करना चाहिए। शिक्षित भौतिक परिप्रेक्ष्य में, शिक्षित अशिक्षित, हिंदू अहिंदू, ब्राह्मण या चंडाल, यही बात नहीं है, आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान जल जैसे ऊपर से आते हैं, तो हम नहीं देखते किसी जगह में कि जल ऊपर जाते हैं। उसका स्वभाव है कि हिमालय से गंगा सागर जाता है, तो सब नदियां का स्रोत है पर्वत में, नहीं है स्रोत है सागर के पास। तो ऐसे दिव्य ज्ञान का मतलब जो ऊपर वाला के बारे में है, सर्वोपरि भगवान के बारे में है, और हम जीव हैं, तो समझना चाहिए कि हम सर्वोपरि भगवान के अधीन हैं, भगवान से निम्न है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेने के अलावा हम और कोई दूसरा उपाय नहीं है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वास्तविक कल्याण प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए शरण लेना चाहिए। शरण का मतलब आत्मसमर्पण। तो देखते हैं कभी कभी अभक्त लोग भी शरण लेते हैं, कहीं देवता में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी में शरण लिया, लेकिन वो शरण लेना नहीं था, वो खाली अभिनय था कि मैं शरण लेता हूं, लेकिन हिरण्यकशिपु का उद्देश्य था कि शरण लेने से मैं कुछ वर मिलूंगा जिससे मैं सब विश्ववासियों को प्रेरण दे सकता हूं। तो वास्तविक शरण लेने का मतलब आत्मसमर्पण। तो यही स्वीकार करना कि मेरा कुछ अपना भाव नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कि मैं इस बद्ध अवस्था में हूं, तो यही लक्षण है कि मैं एक नंबर मूर्ख हूं, और इसलिए शरण लेता हूं जिससे मेरी स्वरूपगत बुद्धि का पुनर्जागरण होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाई श्रवणादि शुद्ध चिते करे ये उदय हुआ। सब जीव का स्वभाव शुद्ध, लेकिन कृष्ण को भूल करके सबके चित्त अभी अशुद्ध जैसे है। सब शुद्ध है लेकिन सबके शुद्ध चित्त के ऊपर एक आवरण है, वो आवरण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो अहंकार से आते हैं, और वो अहंकार है कि मैं कृष्ण से अलग हूं, मेरी अलग स्थिति है कृष्ण से। तो वो पुनर्स्मृति का पुनः जागरण करने के लिए श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पित होना चाहिए। तो वैष्णव प्रचारक कृपा करके सभी लोग के बीच में जाते हैं और प्रचार करते हैं कृष्ण सेवा करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो, लेकिन कैसे भक्ति साधना करने हैं जिससे हम धीरे धीरे भक्ति पथ पर गोलोक पथ पर प्रगत हो सकते। तो ये सब शिक्षा तो केवल आत्मसमर्पित भक्तों को देना है। तो आत्मसमर्पण का मतलब मानस दे हो गए हो जो कि चुमो आप पदे नंद किशो। जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीवन में मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति। वो सही बात, जीवन में मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। आप सब स्वीकार करते हैं ये बात? बात सही नहीं है। अगर हम मुख्य उद्देश्य बोलते हैं इसका मतलब अन्य उद्देश्य भी है, मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, लेकिन मेरा और कुछ भी काम है,
एक ही उद्देश्य,
एक ही उद्देश्य नाम एकम शरण। तो अगर आप बोलते तो फिर वो संसारिक कार्य भी करना है परिवार के लिए, तो वो भी संसारिक कार्य कृष्ण भक्ति उद्देश्य का अधीन होना चाहिए। संसार चलाना किससे है? जिससे मानस देह गेह, गेह मतलब गृह, जो कि चुवा आप पदे नंद किशोर। संसारिक जीवन चलाना चाहिए जिससे संसार में कृष्ण स्मृति होगी, अगर नहीं तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब सदैव कृष्ण स्मरण करना, सदैव कृष्ण सेवा में युक्त होना, सभी प्रयास कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए, कृष्णार्थ अखिल चेष्टिका। तो यही कृष्ण भक्ति है, और कैसे करना है और कैसे श्रवणादि भक्ति करना है जिससे हम शुद्ध भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए वो आत्मसमर्पण यथार्थ गुरु के द्वारा करना चाहिए। कृष्णा रास विलासी है, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। तो कृष्णा स्वयं नीला विलास कहते हैं। तो कृष्णा का कर्तव्य नहीं है दुष्ट जीवों को शिक्षा देना, देते हैं भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षा कृष्णा का प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। गुरु कौन है जो बोलते हैं मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास हूं, और शिष्यों को से कहते हैं तुम भी कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास हो। तो ये दीक्षा का मतलब है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा का मूल अर्थ नहीं है अनुष्ठान में बैठना, नामकरण यज्ञ विधि इत्यादि, मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है आत्मसमर्पण। और वो आत्मसमर्पण औपचारिक दीक्षा विधि के पहले होने चाहिए। वो यज्ञ इत्यादि विधि उपचार है, मतलब भगवान के सामने, भक्तों के सामने, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करना है कि मैं ऐसे भक्ति पूर्ण जीवन शैली पालन करूंगा। लेकिन उसके पहले होने चाहिए, उसके पहले वो संकल्प करना चाहिए। नहीं है कि हम मंदिर रहते हैं, एक बार प्रवचन सुनते हैं, फिर सब ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करना तो नहीं चलेगा, संकल्प करना चाहिए। तो वो संकल्प उसके पहले होना चाहिए, और जब गुरु संतुष्ट हो कि ये व्यक्ति का संकल्प सही है, दृढ़ संकल्प, तो उसकी भक्ति केवल एक दो दिन का केला नहीं है, यही वास्तविक संकल्प है। ये व्यक्ति उत्साही है कृष्ण भक्ति साधना करने के लिए, गुरु हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन, दिव्यम ज्ञानम तथो दत्त, दिव्यम ज्ञानम तो गुरु शास्त्र के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य भी है स्वयं शास्त्र अध्ययन करना। तो जब गुरु देखते हैं कि होने वाले शिष्य उत्साही है और स्थिर है ये सब भक्ति नियम पालन करने में, तो उस समय औपचारिक रूप में अनुष्ठान में दीक्षा देना है। तो बहुत अच्छा है कि आप औदार्य धाम मायापुर में दीक्षा लेते हैं। औदार्य धाम का मतलब उदार्थ, चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, नमो महावदन्याय Krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namni gaura tushena. Ye sab mantra shlok sikhna chahiye, sab dikshit bhakta, ye sab mantra avagat hona chahiye. Bahut mahatva parna hai. Namo mahavaranyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namni gaurashena. Namo namaha naman karte kinko chaitanya mahaprabhu, kyon kyunki ve mo mahavaranya avatar hai. Sabhi avatar vadanya hai, matlab buddha kripalu, lekin mahavaranya hai chaitanya mahaprabhu. Kao chaitanya mahaprabhu ki mahavaranya swabhav ke bare mein kuch bola. Kyon? Kyonki krishna prema pradaya hai. Krishna prema prada sabko krishna prema deta. Krishna krishna ko ye krishna chaitanya krishna hai. Krishnaya krishna chaitanya, krishna chaitanya ka roop mein krishna hai. Aur is roop mein inki tusha arthat anga kanti sham nahi hai, gora hai. Naam ne gora tusha. So, Mahaprabhu Swayam jaise udar hai, to inka dham, jo Mahaprabhu se abhinna hai, wo bhi udar hai. To is Mayapur dham mein, Damodar Mas mein, aap sab milte hain. Naam Diksha Nayan ke liye. To aap wapas jaake sabko bataye Mahaprabhu ki mahima kya hai, aur Mahaprabhu ka agya kya hai. Mahaprabhu ka agya hai Hari Naam ko. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hare. Aur Mahaprabhu ki agya inke antarang bhaktong ke prati kya hai? Suno suno Nityananda, suno Haridas, sarvatra amar agya kara ho prakash, prati ghare ghare giya kara e biksha, bhaja krishna balo krishna karo krishna shiksha. Nityananda Prabhu Haridas Thakur ko Chaitanya Mahaprabhu bale, to suno mera agya, aur sabhi jayga mein mera agya prakat karo prati ghar jaake sabko batao bhaja krishna balo krishna karo krishna shiksha. To isliye hum ghar ghar jaake sabko Bhagavad Gita yatharup dete hain. To aapke alaka mein aap Bhagavad Gita ityadi granth prachar kiji, aur aise aap Chaitanya Mahaprabhu aur Srila Prabhupada ki vishesh kripa mein. Hare Krishna. Kuch prashna hai? Abhi, no bas. Aadha minute baki.
Agar koi shishya diksha leta hai, to naam ne palan nahi karta
hai. To kya? To woh sahi shishya nahi hai. Agar palan nahi karte hain, to kya shishya hai? Ya dhurta?
क्यों वचन देते हैं मैं पालन करूंगा, अगर पालन नहीं करेंगे, अगर संकल्प नहीं हो तो प्रभुपाद बोले कि जो संकल्प करके वचन देके पालन नहीं करते तो शिष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु है। क्योंकि मनुष्य प्रतिज्ञा कर सकते, पशु की शक्ति पशु के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो अगर मनुष्य वचन देते लेकिन पालन नहीं करते तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूपी पशु है। लेकिन एक्चुअली ये सब नियम पालन करने में क्या कठिनाई है? मांस मछली अंडा नहीं खाना, आशा है आप पूरा जीवन में नहीं ले, मतलब आप ब्राह्मण जाति है और अभी तक भारत में है तो अधिक ब्राह्मण वो नियम पालन करते। लेकिन अभी लगभग सभी ब्राह्मण प्याज लहसुन खाते हैं और धीरे धीरे अंडा लेते हैं। बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा ब्राह्मण मटन चिकन सब कुछ करते हरे कृष्ण। तो आप शाकाहारी हैं तो वैष्णव तो शाकाहारी नहीं है, प्रसाद सेवी है, कृष्ण प्रसाद सेवी है। लेकिन वो नियम पालन करना कोई आमिषाहार नहीं लेना कठिन नहीं है। और मद्य सेवा वो मद्य सेवा वो मानुष रूपी पशुओं के लिए है। चाय सेवा वो आजकल सामान्य है, लेकिन चाय चलना है तो उसमें क्या है? चाय अगर नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है? ऐसी नुकसान है अगर चाय लेना है। और क्या अवैध स्त्री संग और पुरुष संग महिलाओं के लिए आज का जमाना अलग है तो वो ये सब आते हैं भारत में। विवाह नहीं करके स्त्री पुरुष संगम होते, लेकिन ये भी पशु वृत्ति है। मानव जीवन में विवाह संस्कार होते पशुओं के लिए नहीं है। और जुआ खेलना लॉटरी इत्यादि ये सब नहीं करने से जीवन शांत होते। और आधुनिक लोग सोचते तो ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? जीवन में और क्या है? तो हे भगवान भजन क्या प्रश्न? महावदन्य मतलब सबसे बड़ा उदार है। कौ बोला ना पात्र पात्र पीछा नहीं नहीं स्थान स्थान जे जहां पाए तहा दे प्रिंदा। मतलब कौन पात्र है, कौन उपयोगी है, कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, तो ये विचार नहीं करके पंच तत्व अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शेर बेटी का राधा शिवास आदि गौर भक्त सबको प्रेम दान दिया।
क्योंकि कलि युग में अधिकारी बहुत कम है, तो कम से कम ही इतना सा अधिकार होना चाहिए कि नम्र स्वभाव भक्ति ग्रहण करने के लिए जो जबरदस्त से अग्रहण करते हैं, मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों के ऐसे लोग की सहायता कैसे करना है। लेकिन जो प्रस्तुत स्वीकार करना कि मैं असहाय हूं और हरि गुरु और वैष्णव की कृपा सहायता मेरे जीवन का की एक ही आशा है, तो जो प्रस्तुत है ऐसे ग्रहण करना, तो वो लोगों को अनाराधा नहीं देखना, प्रेम दान करना है। तो चैतन्य भाव नहीं बोलते हैं कठोर तपस्या करो, सब कुछ चोरो, चैतन्य भाव नहीं बोलते। गृह बा बने थे ठाके हा गौरंग बोले डाके नरोत्तम भागी तरश, त्यागी चाहे त्यागी चाहे गृही जो भी अवस्था में हो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो कृष्ण भक्ति में, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। और इनके महावरण्यता
कृष्ण
मंत्र याद करने चाहिए, तो अगर
किसी
वैसे हम ज्ञान ना पाए, हम हरे कृष्ण पूर्ण निष्ठा विश्वास से ले रहे हैं, तो गलत है। नहीं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना वो ही उपाय है, लेकिन इसके साथ कुछ स्तुति भावना अच्छा हो। तो आप सब सिखा दो क्या क्या मंत्र मुख्य
भावना है,
नहीं अच्छा हो अगर और भी सीख लेंगे, और गीता श्लोक सावधान अंतरितज्ञा मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मन्मना भगवन् भक्तो मध्याजि मां नमस्कुरु, मामे वैशिषि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। ये सब भी सीखना चाहिए। तेहिनोऽस्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जना तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति, सीखना अच्छा है। तो ये सब श्लोक बार बार प्रपल के तत्पर्य में आते हैं ना, वो महावरण्य वो भी आते हैं बार बार प्रपल की ग्रंथों में, और उस समय भी होना है। भोग निवेदन करने का समय तो ठीक है। हम
और जैसे अभी आपने बोला पूर्ण समर्पण, तो यदि हमने
तो वो संकल्प होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा है कि मानसिक दूषण और भौतिक असत्यम का कारण से हम एक सेकंड में पूरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन संकल्प करना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य ये है और विश्वास भी है कि अगर हम इसी रास्ते में जाएंगे हम पूरी शुद्ध कृष्ण भक्ति मिलेंगे।
प्रश्न ये पूछा था महाराज जी की जैसे हम आपके प्रति समर्पित तो हम कोई परेशानी यदि हम पे आती है सांसारिक तो वो भी हम आपसे बात कर सकते हैं आध्यात्मिक में प्रश्न
हाँ कर सकते हैं जिससे हम आध्यात्मिक परिपक्ष मिल सकते हैं इसके ऊपर भौतिक जीवन में तकलीफ होते हैं भौतिक जीवन का लक्षण है लेकिन आध्यात्मिक परिपक्ष से कहना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है अगर हम ज्यादा पैसे मिलते हैं तो समझना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है किस लिए जिससे हम भोग विलास कर सकते नहीं जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते और अगर नुकसान होते पैसा तो वो भी समझना चाहिए कृष्ण की कृपा है जिससे मैं आसक्त नहीं हूंगा और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो साक्षात्कार होते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है फिर वो प्रयास और वो इच्छा कि मैं एक तरफ भक्ति करूंगा और दूसरी तरफ तरस भोग विलास करूंगा वो इच्छा भी क्षीण होगी तो समझना चाहिए कि भौतिक जगत में कुछ सुख नहीं है सुख का नाम है जो चलता है वो सभी दुख का कारण है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु होते हैं इसलिए इनके भक्तों के लिए व्यवस्था करते हैं जिससे वे समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है कृष्ण सेवा के अलावा और सब महान महान भक्त की ऐसी अनुभूति है भगवत में प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज युधिष्ठिर महाराज प्रभुपाद कैसे प्रचार किए पाश्चात्य जगत में खाली जाके सबके बोले बोले तो कृष्ण भक्ति करो ठीक है ठीक ऐसा नहीं था बहुत संघर्ष था तो अभी हम मंदिर जाएंगे हरे कृष्ण
गुरुवार सत्संग करते ना घर में एकादशी एकादशी करते हैं
अच्छा हो एकादशी
के बाद में जो आरती
अच्छा हो एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी कम से कम एकादशी
करते
हैं तो हम तो जय और जय गौर चंद्र संप्रदाय के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र क्योंकि सब बाहर के लोग नहीं समझते जायो जायो गौरचंद तो हर रोज आप जायो जायो गौरचंद ये गान गाए और जब भवले जाते हैं तब हरे कृष्ण मंत्र कहे
तो उनके लिए तो बड़ा इजी काम था ऐसे कुछ पहले मतलब ये दिखाना सब कुछ क्या था तो दूसरी आत्मा थी उनको तो कष्ट नहीं होता लेकिन जनरल आदमी अगर गोस्वामी जी के लिए फॉलो करेगा उसको शायद कष्ट होगा क्या उस कष्ट को सहन कर सकेगा
महान महान भक्त हमको आदर्श दे देते हैं और उनके इनके पथ का अनुसरण करना चाहिए लेकिन अनुकरण नहीं तो उनका आचरण से समझना चाहिए कि हम भौतिक विषय पर लिप्त नहीं होना चाहिए लेकिन उस प्रकार का तपस्या करना हमारे लिए कोई शक्यता नहीं है। हम अगर एक दिन कम आहार लेते हैं तो हम बहुत विचलित होते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी दो दिन में एक बार इतने से चास लेते थे। गुजराती माँ चास आपका बोला मैंने आप गुजरात
कहते
हैं कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा ध्यान रखते हैं, पर हम सोचते हैं
हम तो वाली कैटेगरी में भी
फेल,
मतलब हम तो कुछ
भी नहीं, भक्त का सोचना नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ,
मैं प्रहलाद महाराज जैसे, हम तो कुछ भी कह सकते हैं क्या
हमारे भगवान। लेकिन दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, नहीं दीक्षा एक बात है, अगर कोई एक बार दिल से हरे कृष्ण बोलते तो भगवान वो आदमी को विशेष नजर रखते, तो वो एक बार बोला मेरा नाम तो उसको लाना चाहिए मेरे पास,
उसी
टाइम
ध्यान
रखते
हैं फिर आगे
हमारा नहीं, भगवान के साथ कपाटी नहीं चलेंगे, आंतरिक भाव होना चाहिए, आंतरिक भाव अगर हो तो हम हमेशा प्रयास करेंगे कृष्ण सेवा करने, इसलिए ये साधना विधि है, तो हर रोज यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, यही करना चाहिए।